بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراجیہ ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سمانیہ شروتا زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام سویکار کریں۔ پریہ شروتا مترو، کارکرم کا شبھارمبھ پوتر قرآن کے سورہ لقمان کی 16ویں، 17ویں اور 18ویں آیتوں کی تلاوت اور انواد سے کیا جا رہا ہے۔ قاری ہیں شری مصطفیٰ اسماعیل۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا بني إنها فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها
اللہ کے نام سے جو اتیانت کرپاشیل اور دیاوان ہے۔ لقمان نے کہا، ہے میرے بیٹے، یدی وہ کرم رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، پھر وہ کسی چٹان کے بھیتر ہو یا آکاشوں یا دھرتی میں، ایشور اسے پرلے میں سامنے لے آئے گا۔ نسندے ایشور سوکشم درشی اور جانکار ہے۔ ہے میرے بیٹے، نماز قائم کرو اور بھلائی کا آدیش دو اور برائی سے روکو، اور جو بھی مصیبت تم پر پڑے اس پر دھیرے کرو، نشچے ہی یہ بڑے ساہس کا کام ہے۔ اور لوگوں کے سامنے گھمنڈ سے اپنا منہ ٹیڑھا نہ کرو، اور نہ دھرتی پر اکڑ کر چلو، निसंदेह ईश्वर किसी अकड़ने वाले और इतराने वाले को पसंद नहीं करता।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। श्रोताओं, हमारा प्रसारण आप शॉर्टवेव में 31 मीटर बैंड बराबर 9800 किलोहर्ट्ज पर सुन रहे हैं। आज शनिवार है, बहमन की 14, रजब की 22 और फरवरी की 3 तारीख। इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम इस प्रकार हैं। सबसे पहले आप सुनेंगे विश्व समाचार, उसके बाद राजनीतिक चर्चा, उसके बाद हम आपको विशेष कार्यक्रम स्वतंत्रता प्रभात सुनवाएंगे और वो अंतिम कार्यक्रम होगा अच्छी आदतें। ताज़ा और विस्तृत खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट देखते रहिए, पता है pastudio.ir/hi। आप सैयद मीसम और मरियम मेहरदादी से विश्व समाचार सुनिए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आज के मुख्य समाचारों का सारांश। इराक ने अमरीकी हमलों की कड़ी शब्दों में निंदा की और भयावह नतीजों की चेतावनी दी है। अमरीका का कहना है कि इराक और सीरिया में हमले जॉर्डन में हुए अमरीकी सैन्य अड्डे पर हमले के जवाब में किए गए हैं। इराकी प्रतिरोधी संगठनों ने अमरीकी हमलों के जवाब में अमरीकी सैन्य ठिकानों को एक बार फिर निशाना बनाया है। हमास ने पिछले 2 दशक से इसराइली जेल में बंद फिलिस्तीनी नेल्सन मंडेला की रिहाई की शर्त रखी है। और अब आप विस्तार से समाचार सुनिए।
इराक ने अमरीकी हमलों की कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि इस आक्रामकता के इस इलाके में भयावह नतीजे हो सकते हैं। गौरतलब है कि अमरीका ने शनिवार को तड़के इराक और सीरिया में इस्लामी प्रतिरोधी संगठनों के कई ठिकानों पर बमबारी की। इराक के विदेश मंत्रालय ने बगदाद में अमरीकी राजदूत को तलब करके देश में अमरीकी हवाई हमलों पर कड़ी आपत्ति जताई है और इसे अमरीकी आक्रामकता बताया है। इराक के प्रधानमंत्री शिया अल सूदानी के कार्यालय ने एक बयान जारी करके कहा है कि अमरीकी हमलों में 16 लोगों की मौत हो गई जबकि 25 अन्य घायल हो गए हैं। बयान में अमरीकी हमलों को इराक की संप्रभुता का खुला उल्लंघन बताते हुए कहा गया है कि बगदाद से इन हमलों के लिए समन्वय नहीं किया गया और इस तरह का प्रोपेगंडा सरासर झूठ है। इराकी सेना के प्रवक्ता यहया रसूल ने इन हमलों की निंदा करते हुए कहा कि ये हमले इराकी संप्रभुता का उल्लंघन है। उन्होंने वाशिंगटन को चेतावनी देते हुए कहा है कि इसके इराक और क्षेत्र की सुरक्षा के लिए भयावह नतीजे निकल सकते हैं। सेंटकॉम ने कहा है कि इराक और सीरिया में उसके कई लड़ाकू विमानों ने, कि जिनमें बमवर्षक विमान भी शामिल थे, 85 लक्ष्यों को निशाना बनाया है।
अमरीका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि उनकी सेनाओं ने इराक और सीरिया के भीतर स्थित प्रतिष्ठानों पर हमले किए हैं और ये हमले इलाके में अमरीकी ठिकानों पर होने वाले हमलों के जवाब में किए गए हैं। عراق نے امریکی حملوں کی کڑے شبدوں میں نندا کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ عراق کے راشٹریہ سمپربھوتا کا آنند کر رہا ہے جس کا شیتریہ استھرتا پر برا اثر پڑے گا۔ جو بائیڈن نے دعویٰ کیا کہ جن پرتشٹھانوں پر امریکی فورسز نے حملے کیے ہیں وہ ایران کے آئی آر جی سی فورس اور اس کی گھٹک فورسز دوارا استعمال کیے جاتے ہیں۔ امریکی راشٹرپتی نے کہا کہ حملہ جوابی حملہ جو آج شروع ہوا ہے آنے والے سمے میں جاری رہے گا۔ جارڈن میں ست امریکی چھاونی پر گت رویوار کو ہوئے حملے میں مارے گئے 3 امریکی سینکوں کے شووں کا امریکہ میں سواگت کرتے ہوئے جو بائیڈن نے کہا کہ ہم پشچمی ایشیا یا کسی اور استھان پر جنگ نہیں چاہتے، مگر ہمیں کوئی نقصان پہنچائے گا تو ہم جواب دیں گے۔ یاد رہے کہ سیریا اور عراق میں امریکہ نے بلپوروک کھما کیجیے گا یاد رہے کہ سیریا اور عراق میں امریکہ نے بلپوروک اپنے سینی اڈے بنا رکھے ہیں اور دونوں ہی دیشوں کی سرکاروں اور جنتا کو امریکی سینک اڈوں پر آپتی ہے۔ غزہ پر زوانی شاسن کے حملے شروع ہونے کے بعد سیریا اور عراق میں امریکی ٹھکانوں پر عراقی اور سیریا سنگٹھنوں نے حملے کیے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ غزہ میں جنگ جاری رہی تو حملے بھی ہوتے رہیں گے۔ عراقی فورسز کے پروکتا یحییٰ رسول نے کہا کہ امریکہ سیناؤں کے حملے عراق کی راشٹریہ سمپربھوتا کا کھلا الگھن ہے، جبکہ عراق علاقے میں استھرتا کو سنشچت کرنے کے لیے سنگھرش کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ حملے عراق اور علاقے کو اس استھتی کی اور لے جائیں گے جس کے نتیجے اچھے نہیں ہوں گے۔
عراق میں آتنکواد نرودھک سنگھٹنوں کے گٹھ بندھن دا اسلامک ریزسٹنس نے کہا ہے کہ امریکہ کے ہوائی حملوں کے جواب میں سیریا اور عراق میں استھت امریکی سینیہ ٹھکانوں پر کئی حملے کیے گئے ہیں۔ شنیوار کو تڑکے جاری ہونے والے بیان میں اسلامی پرتیرودھ سنگھٹن کا کہنا تھا کہ الانبار پرانت میں استھت عین الاسد چھاونی سہت کئی امریکی سینیہ ٹھکانوں پر میزائل فائر کیے گئے ہیں۔ اسلامک ریزیڈینس کا کہنا تھا کہ دکشن پشچمی سیریا میں تنف استھت امریکی ملٹری بیس پر بھی میزائل اور ڈرون سے حملے کیے گئے، جبکہ سیریا کے حسکا پرانت کے خدرہ علاقے میں بھی امریکی سینیہ چھاونی پر حملہ کیا گیا۔ امریکہ اپنے دھوتا پورن حملوں کو جوابی حملہ کہہ رہا ہے اور اس کا کہنا ہے کہ گت شنیوار کو جارڈن میں امریکی فورسز پر ہوئے حملے کے جواب میں یہ حملے کیے گئے ہیں۔
فلسطینی ریزسٹنس فورسز نے کہا کہ ان کے میلوں میں کم سے کم 25 زوانی سینک ہتات اور گھائل ہوئے ہیں، جبکہ کئی ٹینکوں اور سینک گاڑیوں کو دھست کر دیا گیا ہے۔ غزہ اور خان یونس کی لڑائی میں زوانی سینہ کو یہ بھاری نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ حماس کی سینی شاخہ غزہ بریگیڈ نے کہا کہ غزہ شہر کے پشچم میں اس کے جوانوں نے کم سے کم 15 زوانی سینکوں کو 0 پوائنٹ سے مارا ہے۔ اسی علاقے میں 3 مرکاوا ٹینکوں اور سینکوں کو لے جانے والی گاڑی کو الیاسین 105 راکٹ سے اڑا دیا گیا۔ خان یونس میں بھی غسام بریگیڈ نے زوانی سینہ کا مرکاوا ٹینک دھوست کر دیا۔ وہیں جہاد اسلامی کی گڈس بریگیڈ نے کہا کہ ان کے جوانوں نے کم سے کم 10 زوانی سینکوں کو خان یونس کے ہائی عمل علاقے میں نشانہ بنایا۔ خان یونس میں ہی قدس بریگیڈ نے ایک انیہ حملے میں کئی زوانی سینکوں کو نشانہ بنایا۔ غزہ اور خان یونس میں زوانی سینہ اور فلسطینی سنگھرش کرتاؤں کے بیچ بھیشن لڑائی چل رہی ہے۔ اسرائیل اور حماس کے بیچ غزہ میں سنگھرش ورام کو لے کر اسرائیل اور حماس کے بیچ غزہ میں سنگھرش ورام کو لے کر پرگتی کی اٹکلیں ہیں، جبکہ فلسطینی سنگٹھنوں حماس اور جہاد اسلامی کا کہنا ہے کہ وہ سنگھرش ورام کے سمجھوتے کے بندوں کا ابھی بھی ادھیان کر رہے ہیں۔
حماس نے غزہ یدھ ورام کے لیے ہونے والی وارتا کے دوران اسرائیلی جیل میں بند فلسطینی نیتا مروان برغوسی کو رہا کرنے کی شرط رکھی ہے۔ کچھ فلسطینی انہیں فلسطینی نیلسن منڈیلا کے روپ میں دیکھتے ہیں اور ان کا ماننا ہے کہ وہ بھوشیہ میں فلسطینیوں کا نیتو کرنے کی یوگیتا رکھتے ہیں۔ اسرائیل کی جیلوں میں قید فلسطینی قیدیوں میں وہ سب سے ہائی پروفائل قیدی مانے جاتے ہیں۔ اب حماس اور زائن شاسن کے بیچ یدھ ورام کے لیے ہونے والی وارتا میں برغوسی کو آزاد کیے جانے کی بھی شرط رکھی گئی ہے۔ حماس نیتاؤں نے غزہ میں لڑائی کو سماپت کرنے کے لیے کسی بھی سمجھوتے کے حصے کے روپ میں برغوسی کو رہا کرنے کی مانگ رکھی ہے۔ برغوسی 2 دشک سے ادھک سمے से सलाखों के पीछे बिताने के बाद भी फिलिस्तीनी राजनीति के केंद्र में है। हमास के वरिष्ठ अधिकारी ओसामा हमदान ने बरगोसी की रिहाई का आह्वान किया है। फिलिस्तीनियों के लिए ज़ायोनी जेलों में बंद अपने प्रियजनों की दुर्दशा बेहद भावनात्मक है। फिलिस्तीनी व्यापक रूप से उन्हें इसराइली कब्जे के खिलाफ लड़ने वाले नायक के रूप में देखते हैं।
हमास के नेता इस्माइल हानिया ने कहा है कि हमास और जिहाद इस्लामी इस विषय पर विचार कर रहे हैं कि कोई भी बातचीत गजा में पूरी तरह संघर्ष विराम और इस इलाके से ज़ायोनी सैनिकों के निष्कासन पर जाकर समाप्त होनी चाहिए। हमास के पोलितो ब्यूरो चीफ इस्माइल हानिया ने कहा कि संघर्ष विराम से संबंधित दस्तावेज पर हमारा सारा विचार इस बात पर केंद्रित है कि गजा पर इसराइल का हमला पूरी तरह बंद होना चाहिए और गजा से सारे इसराइली सैनिकों को बाहर निकलना चाहिए। इस विषय पर इस्माइल हानिया और जिहाद इस्लामी के जनरल सेक्रेटरी ज़ियाद अल नुखाला के बीच बातचीत हुई है और गजा में ज़मीनी परिस्थितियों का जायज़ा लिया गया। बातचीत के बाद जारी बयान में कहा गया है कि दोनों ही संगठनों के नेता इस बात पर एकमत हैं कि गजा पर इसराइल के हमले पूरी तरह बंद हों। इसराइली सैनिक गजा पट्टी से पूरी तरह बाहर निकलें, गजा का परिवेशन समाप्त किया जाए, गजा का पुनर्निर्माण हो और ज़रूरत की सारी चीज़ों की सप्लाई की जाए।
यमन के अंसारुल्ला आंदोलन के अधिकारी ने कहा है कि यमन के लोग इराक और सीरिया की रेजिस्टेंस फोर्सेस के साथ खड़े हैं और हम फिलिस्तीन का समर्थन जारी रखेंगे। अंसारुल्ला के पोलिस ब्यूरो के सदस्य अली अल कहूम ने कहा है कि इराक और सीरिया के भीतर अमेरिका के हमले निंदनीय हैं और हम सीरिया और इराक की रेजिस्टेंस फोर्सेस के साथ हैं। उन्होंने कहा कि हम लड़ाई के मैदान में रेजिस्टेंस फोर्सेस के साथ पूरी मजबूती से खड़े हैं। याद रहे कि यमन की सेना और अंसारुल्ला आंदोलन ने गजा में ज़ायोनी शासन के हाथों जारी फिलिस्तीनियों के नरसंहार और नस्लीय सफाई पर आपत्ति जताते हुए लाल सागर का रास्ता उन जहाज़ों के लिए बंद कर दिया जो इसराइली बंदरगाहों की ओर जाना चाहते हैं। अमेरिका और ब्रिटेन ने इस मामले में यमन के भीतर हमले किए तो यमनी सेना ने लाल सागर का रास्ता अमेरिका और ब्रिटेन के जहाज़ों के लिए भी बंद कर दिया।
रूस में व्लादिमीर पुतिन कभी प्रधानमंत्री बनकर तो कभी राष्ट्रपति के रूप में 1999 से ही रूस की सत्ता के केंद्र में बने हुए हैं। अब उन्होंने एक बार फिर से राष्ट्रपति बनने के लिए अपना चुनावी अभियान शुरू कर दिया है। इस मौके पर खेल जगत के सितारे, संगीतकार, टीवी कलाकारों समेत कई दूसरी हस्तियां भी मौजूद थीं। 71 साल के व्लादिमीर पुतिन की जीत इस बार भी तय मानी जा रही है। हालांकि पुतिन को राष्ट्रपति चुनाव में एक नेता बड़ी चुनौती पेश करने को तैयार है जिसे लोगों का समर्थन भी मिल रहा है। 70 वर्षीय बोरिस नादेजदीन पुतिन को टक्कर देने के लिए तैयार हैं। ये स्थानीय विधायक और शिक्षाविद भी हैं। माना जा रहा है कि आगामी राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ वे बड़ी चुनौती खड़ी कर सकते हैं। रूसी विपक्ष ने भी बोरिस नादेजदीन को राष्ट्रपति पद की दौड़ में नामांकित करने की मांग की है।
मोदी सरकार ने पड़ोसी देश मालदीव को दी जाने वाली वित्तीय सहायता में कटौती कर दी है। 2023 में भारत ने मालदीव के लिए मदद में वृद्धि करके 770 करोड़ रुपए कर दी थी, लेकिन इस साल पेश किए गए आंतरिक बजट में ये मदद घटाकर 600 करोड़ रुपए कर दी गई है। इसका मतलब यह है कि भारत की ओर से मालदीव को जारी दी जाने वाली विकास सहायता राशि को 22% घटा दिया गया है। इसी के साथ रेडियो तेहरान से समाचार समाप्त हुए।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज।
राजनीतिक चर्चा।
राजनीतिक चर्चा के साथ मैं अख्तर रिज़वी आपकी सेवा में उपस्थित हूँ, मेरा सलाम स्वीकार कीजिए। हमारी आज की चर्चा के विषय हैं सीरिया और इराक में अमेरिका के हमले, इराक में आग भड़काने की कोशिश, हमास और जिहाद इस्लामी के प्रमुखों के बीच बातचीत और भारत नियंत्रित कश्मीर में कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशियों के नामों का ऐलान। तो सबसे पहले सीरिया और इराक में अमेरिका के हमलों का विषय। सीरिया और इराक में अमेरिका के हमले एक बार फिर तेज हो गए हैं, जिसे इलाके में युद्ध की आग भड़काने की कोशिश बताया जा रहा है। एक समीक्षा पेश कर रहे हैं हमारे साथी अहमद अब्बास।
अमेरिका वर्षों से पश्चिमी एशिया के इलाके में अपनी सैनिक उपस्थिति के जरिए अस्थिरता और अशांति पैदा कर रहा है, ताकि अपने और अपने घटकों के स्वार्थों की हिफाजत करे। अमरीका ने इस लक्ष्य के तहत कई बार इस इलाके को युद्ध की आग में झोंका है। इस क्रम में अमेरिका ने नई हरकत ये की कि शुक्रवार की रात में सीरिया और इराक में कई प्रतिष्ठानों पर बमबार विमानों से 85 से अधिक टारगेट्स पर बमबारी की। सेंटकॉम के बयान के अनुसार इस हमले में 125 से अधिक मिसाइल और बम इस्तेमाल किए गए। सेंटकॉम ने दावा किया कि हमले में कंट्रोल और कमांड सेंटर, इंटेलिजेंस सेंटर, रॉकेटों और मिसाइलों, ड्रोन विमानों के भंडारों और दूसरे प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया। अमेरिका का दावा है कि इन प्रतिष्ठानों का प्रयोग करते हुए इराक और सीरिया में अमेरिकी ठिकानों पर हमले किए जाते थे। व्हाइट हाउस ने एक बयान में कहा कि ये हमले एक अमेरिकी सैनिक छावनी पर होने वाले हमले के जवाब में किए गए हैं। टावर 22 नाम की छावनी पर गत रविवार को हुए हमले में 3 अमरीकी सैनिक मारे गए थे और 34 घायल हो गए थे। अमरीकी राष्ट्रपति ने कहा था कि हमले अभी जारी रहेंगे, मगर साथ ही उन्होंने ये दावा भी किया कि अमरीका पश्चिमी एशिया या किसी भी इलाके में जंग नहीं चाहता, जबकि सच्चाई यह है कि अमेरिका दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया के अलग अलग इलाकों में बहुत सारी जंगों का जिम्मेदार है। अफगानिस्तान और इराक पर अपने हमलों में अमेरिका ने लाखों की संख्या में लोगों को कत्ल किया और दोनों देशों को बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया। अमरीका की गतिविधियों के नतीजे में आतंकवाद को बढ़ावा मिला। इसके बाद अमरीका ने अरब और पश्चिमी देशों का गठजोड़ बनाकर सीरिया पर युद्ध थोप दिया। पूरा सीरिया युद्ध की आग में झोंक दिया गया, जिससे ये देश तबाह होकर रह गया। दूसरी तरफ अमेरिका ज़ायनी शासन का खुलकर समर्थन करता है, जो पिछले 75 साल से इस इलाके में जनसंहार और नस्लीय सफाई में लिप्त है। हालिया गजा जंग में अमेरिका ने ज़ायनी शासन के अपराधों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और इसराइल की हर जरूरी मदद की, ताकि वह गजा पट्टी में नस्लीय सफाया जारी रख सके। अहम बात यह है कि सीरिया और इराक में रेजिस्टेंस फोर्सेस के ठिकानों पर अमेरिका ने तब हमले किए जब गजा में ज़ायनी शासन के भयानक अपराधों और अमेरिका की ओर से ज़ायनी शासन का भरपूर साथ दिए जाने के नतीजे में पश्चिमी एशिया के हालात तनावपूर्ण हैं और लाल सागर की स्थिति भी काफ़ी चिंताजनक है। गजा युद्ध का चौथा महीना चल रहा है और अमरीका ज़ायनी शासन के अपराधों के समर्थन में कोई कमी नहीं कर रहा है। इन हालात की वजह से पश्चिमी एशिया और विशेष रूप से इराक और सीरिया में इस्लामी रेजिस्टेंस नेटवर्क से जुड़ी फोर्सेज, इसी तरह यमनी फोर्सेज ने कहा है कि अगर गजा में ज़ायनी शासन के अपराधों पर अंकुश न लगाया गया तो इलाके में अमरीका के सैनिक ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा, क्योंकि वो इसराइल का समर्थन कर रहा है। इलाके में इस्लामी प्रतिरोध फोर्सेज ने बार बार कहा है कि अमरीकी सैन्य ठिकानों पर उनके हमलों की असली वजह गजा में ज़ायनी शासन के हाथों फिलिस्तीनियों का नस्लीय सफाया है, जिसका अमरीका समर्थन कर रहा है। इन फोर्सेज का कहना है कि जब तक अमरीका अपनी नीति नहीं बदलता और ज़ायनी शासन का समर्थन नहीं रोकता, अमरीका के ठिकानों पर हमले किए जाते रहेंगे। इस बीच अमरीका की एक घटिया हरकत यह भी है कि अमरीकी ठिकानों पर होने वाले हमलों को ईरान से जोड़ने की कोशिश करता है। ईरान का कहना है कि वो फिलिस्तीनी संगठनों और इस्लामी रेजिस्टेंस फोर्सेस का खुलकर समर्थन करता है, लेकिन ये फोर्सेस अपने फैसले खुद करती हैं। ईरान ने साफ कहा है कि अगर उसके हितों को अमेरिका ने निशाना बनाने की कोशिश की तो सेल्फ डिफेंस के तहत वो जवाबी कार्यवाही जरूर करेगा।
और अब रुख करते हैं फिलिस्तीन की ओर।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है।
और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा। समाचारों से एक कदम आगे बढ़ते हुए घटनाओं की तह तक पहुंचने और विभिन्न आयामों को छूने की कोशिश। कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा।
फिलिस्तीन के जिहाद इस्लामी आंदोलन और हमास के प्रमुख इस्माइल हनिया के बीच बातचीत की खबर सामने आई है। एक समीक्षा पेश कर रहे हैं हमारे साथी कायम रिजवी।
फिलिस्तीन के दो प्रतिरोधी संगठनों के प्रमुखों ने पेरिस बैठक के मसौदे के बारे में विचार विमर्श किया है। हमास की राजनीतिक शाखा के प्रमुख इस्माइल हनिया और जिहाद इस्लामी के महासचिव ज़ियाद नुखाला ने 2 फरवरी को टेलीफोनी वार्ता में पेरिस मसौदे के संदर्भ में प्रतिरोध की शर्तों के बारे में आपस में वार्ता की। उनका कहना था कि किसी भी प्रकार की वार्ता गजा से ज़ायोनी सेना की वापसी और पूरी तरह से युद्ध की समाप्ति के बाद ही शुरू होनी चाहिए। इन नेताओं के अनुसार इस वार्ता में परिवेष्टन को समाप्त करने, गजा के पुनर्निर्माण, मूलभूत वस्तुओं की आपूर्ति और बंदियों के आदान प्रदान जैसे मुद्दे शामिल होने चाहिए। इससे पहले फ्रांस की राजधानी पेरिस में ज़ायोनी शासन, अमरीका, मिस्र और कतर गजा युद्ध को रुकवाने तथा ज़ायोनी बंदियों की आज़ादी जैसे विषयों पर एक सहमति पर पहुंचे थे। 7 अक्टूबर सन 2023 को प्रतिरोध के अभियान के आरंभ होने के लगभग 50 दिनों के बाद अवैध ज़ायोनी शासन संघर्ष विराम के लिए विवश हुआ था। ज़ायोनी शासन ने अपनी जनता को वचन दिया था कि वो फिलिस्तीनियों के प्रतिरोध की कमर तोड़कर विजय हासिल करेगा, किंतु समय गुजरने के साथ पूरी दुनिया के लिए ये बात स्पष्ट हो गई कि प्रतिरोधकर्ताओं की क्षमता बहुत अधिक है और वे बहुत ही मजबूत हैं। फिलिस्तीनी प्रतिरोधकर्ताओं के साथ झड़पों में ज़ायोनी सेना को कल्पना से भी अधिक क्षति पहुंची है। बहुत से स्थानों पर प्रतिरोधकर्ता ज़ायोनी सैनिकों को खदेड़ने में भी सफल रहे हैं। फिलिस्तीनी प्रतिरोधकर्ताओं की क्षमता के संदर्भ में अवैध ज़ायोनी शासन के भूतपूर्व प्रधानमंत्री एहूद ओलमर्ट ने स्वीकार किया है कि हमास का मुकाबला करने में तेल अवीव के पास उचित सैन्य बल मौजूद नहीं है। उन्होंने नेतन्याहू की कड़ी आलोचना करते हुए कहा, इसराइल का मंत्रिमंडल इस समय हमास के सामने नतमस्तक है। उनका कहना था कि अब फिलिस्तीनियों ने हमारे लिए स्कूल खोल दिया है जिसमें वे ज़ायोनियों को पढ़ा रहे हैं। ज़ायोनी अधिकारी बारंबार अपनी अक्षमता और फिलिस्तीनियों के प्रतिरोध की शक्ति को स्वीकार कर चुके हैं, जबकि उनको अमरीका और पश्चिम का खुला आर्थिक और सैनिक समर्थन हासिल है। एक लंबे युद्ध के बाद फिलिस्तीन के प्रतिरोधी गुटों ने अल अक्सा तूफान नामक अपने सैन्य अभियान के माध्यम से कुछ ऐसी उपलब्धियां अर्जित कर ली हैं जिनको अनदेखा नहीं किया जा सकता। वर्तमान समय में संघर्ष विराम के लिए कराए जाने वाले प्रयासों में उनकी ओर से अपनी शर्तों का पेश किया जाना पूरी तरह से उनके मुकाबले में अवैध ज़ायोनी शासन की अक्षमता और कमजोरी का परिचायक है।
और अब रुख करते हैं भारत का। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने भारत नियंत्रित कश्मीर में अपने प्रत्याशियों के नामों को अंतिम रूप दे दिया है। विस्तृत रिपोर्ट के साथ श्रीनगर से हमारे संवाददाता सिप्ते मोहम्मद हसन।
जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस ने भी लोकसभा चुनाव को लेकर श्रीनगर में एक बैठक की, जिसके बाद उन प्रत्याशियों का नाम आखिरी चरण में पहुंच गया है जिन्हें लोकसभा के हवाले से कैंडिडेट बनाया जा रहा है। श्रीनगर में कांग्रेस के राज्य अध्यक्ष विकार रसूल ने पत्रकारों के साथ वार्ता करते हुए कहा कि लोकसभा के चुनाव सर पे हैं और ऑल इंडिया कांग्रेस के एक दिग्गज नेता इस अवसर पर जम्मू कश्मीर की यात्रा पे है और उन्होंने प्रदेश कांग्रेस की एक बैठक बुलाई है जिसमें उन कैंडिडेट्स के नाम फाइनल किए जाएंगे जो लोकसभा चुनाव में भाग लेने जा रहे हैं। यहाँ ये बात उल्लेखनीय है कि सब अटकलें लगा रहे थे कि गुपकार एलायंस में शामिल दल एकजुट होकर अपने कैंडिडेट्स उठाएंगे और कांग्रेस अगरचे उसका हिस्सा नहीं था परंतु ऐसा दिख रहा था कि वो भी उसमें अपना हाथ डाल सकते हैं, परंतु अब ऐसा दिख नहीं रहा है और तमाम दल इस प्रयासों में लगे हुए हैं कि वो अपने अपने कैंडिडेट्स के नाम फाइनल करें। इस हवाले से वकार रसूल ने पत्रकारों के साथ वार्ता करते हुए कहा,
पार्लियामेंट इलेक्शन जो 2024 में हो रहा है उसका जो कैंडिडेट फाइनल करना है तो उसकी मीटिंग रखी हुई है जो प्रदेश इलेक्शन कमेटी है जम्मू कश्मीर की, जिसमें हमारे 25-26 लोग हैं मेंबर, उनके साथ स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन साहब की मीटिंग हो रही है। ये मीटिंग कम्प्लीट होने के बाद उसके बाद दिल्ली में मीटिंग होगी और फाइनलाइज होंगे कैंडिडेट।
इस बीच जम्मू कश्मीर में एक बार फिर हिमपात आरम्भ हो गई है और लोगों ने राहत की सांस ली है। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बर्फबारी हो रही है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में भी बर्फबारी आरंभ हो चुकी है। मौसम विभाग का कहना है कि ये सिलसिला 2 दिवस तक जारी रहेगा। यहाँ ये बात उल्लेखनीय है कि ये ऐसा पहला अवसर है कि जब 40 दिवस तक जम्मू कश्मीर में हिमपात नहीं हुआ था, जिस पर मौसम विभाग ने काफी चिंता प्रकट की थी, परंतु अब जो नई स्थिति सामने आई है उसे मौसम विभाग का ये कहना है कि वाटर रिजर्व्स बढ़ जाएंगे और जम्मू कश्मीर में जो स्थिति बन रही थी उसमें अब सुधार के आसार नजर आ रहे हैं। सिप्त मोहम्मद हसन, रेडियो तेहरान, श्रीनगर।
और इसी के साथ राजनीति चर्चा का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हुआ।
स्वतंत्रता प्रभात।
दोस्तों, ईरान में इस्लामी क्रांति की सफलता की वर्षगांठ पर एक विशेष कार्यक्रम लेकर उपस्थित हैं रविश जैदी और मरियम मेहरदादी का। सलाम, स्वीकार कीजिए।
निस्संदेह ईरान की इस्लामी क्रांति को दुनिया की सबसे लोकप्रिय क्रांतियों में से एक माना जाता है। इस महान आंदोलन में ईरानी जनता की व्यापक उपस्थिति के बिना तानाशाही पहलवी शासन को उखाड़ फेंकना संभव नहीं था, जिसे विदेशी महाशक्तियों, सुरक्षा बलों और शक्तिशाली सेना का समर्थन प्राप्त था। लेकिन जिस चीज ने क्रांति में लोगों की भागीदारी को और अधिक गौरवशाली बना दिया वो शाह के शासन के खिलाफ प्रदर्शनों और विरोध प्रदर्शनों में महिलाओं की सक्रिय और साहसी उपस्थिति थी। क्रांति से पहले पुरुषों की तरह वे भी उत्पीड़न, भेदभाव, घुटन और दुर्भाग्यपूर्ण आर्थिक स्थिति से पीड़ित थीं। लेकिन वे सबसे ज्यादा यौन भ्रष्टाचार के प्रसार और महिलाओं के उपकरण के रूप में इस्तेमाल से नाराज थीं।
इस्लामी क्रांति के आंदोलन की शुरुआत से ही क्रांति के नेता स्वर्गीय इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने महिलाओं की स्थिति और सम्मान पर विशेष ध्यान दिया। क्रांतिकारी महिलाओं ने भी अपने दयालु और लोकप्रिय नेता पर भरोसा करते हुए आंदोलन में एक अनूठी भूमिका निभाई। क्रांति में महिलाओं की उपस्थिति का महिमा मंडन करते हुए स्वर्गीय इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था कि हमें ये जीत पुरुषों से पहले महिलाओं से मिली है। हमारी आदरणीय महिलाएं अग्रिम पंक्ति में थीं। हमारी प्रिय देवियां पुरुषों के साहस का कारण बनी। हम आपके ऋणी हैं। सम्मान, विश्वास और ईरानी महिलाओं को पहचान मिलने के कारण इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह और क्रांति के साथ उनका एक मजबूत रिश्ता स्थापित हो गया और उन्होंने इस्लामी क्रांति के बाद विभिन्न क्षेत्रों में अपनी उपलब्धियों का प्रदर्शन करते हुए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
ये बात पूरे विश्वास से कही जा सकती है कि क्रांतिकारी मूल्यों और मानदंडों की दृढ़ता ईरानी महिलाओं की कला में रुचि और क्रांति से गहरे जुड़ाव का नतीजा है, क्योंकि अगर ये मजबूत रिश्ता नहीं होता तो क्रांति के सभी आयामों का चित्रण नहीं किया जाता और दूसरे राष्ट्रों के लिए इसे प्रस्तुत करना संभव नहीं होता। इसी वजह से आज ये बात कही जा सकती है कि ईरानी कला और कलाकारों की प्रगति का श्रेय इस्लामी क्रांति को जाता है। इस्लामी क्रांति ने भी कठिन वैश्विक परिस्थितियों और कड़े प्रतिबंधों के दौरान विचार, कलम और कैमरे के जरिए दुनिया के कोने कोने तक अपनी आवाज पहुंचाई।
दोस्तों, कुछ अध्ययनकर्ताओं ने इस्लामी कला को एक ऐसी कला बताया है जो इस्लामी और ईश्वरीय विषयों को बयान करती है, इसलिए इस कला को इस्लामी शिक्षाओं के मुताबिक होना चाहिए ताकि उसे इस्लामी कहा जा सके। दूसरे शब्दों में, धार्मिक कला विभिन्न शैलियों और विभिन्न तरीकों से पवित्रता का एक सौंदर्य अनुभव है और यही धार्मिक कला का सार है। इस तरह की परिभाषा के आधार पर इस्लामी कला लोक और परलोक में श्रेष्ठ विषयों की भी अभिव्यक्ति का जरिया है। हालांकि इस्लामी कला की परिभाषा की पृष्ठभूमि में ऐतिहासिक अध्ययनों और विश्लेषणों के आधार पर यह नतीजा हासिल किया जा सकता है कि यह कला इस्लामी देशों की कला नहीं है। हाँ, इनमें से अधिकांश की रचना मुस्लिम शासकों के दौर में की गई है।
इतिहास पर नजर डालने से पता चलता है कि इस्लामी क्रांति ने ऐसे दौर में सफलता हासिल की जब मार्क्सवाद और उदारवाद जैसी धर्म विरोधी और आध्यात्मिक विरोधी विचारधाराओं का डंका बज रहा था। ऐसे समय में इस्लामी क्रांति ने दुनिया को मनुष्य और धर्म के बीच संबंध का एक नया संदेश दिया। उस समय कला के लिए कला जैसे विचार और नारे हाशिए पर डाल दिए गए थे और ईरानी क्रांतिकारी और मुस्लिम समाज और कलाकारों का कोई महत्व नहीं था।
इस्लामी क्रांति की सफलता के प्रारंभिक वर्षों में लोक कला को प्रोत्साहित किया गया और उसे बढ़ावा दिया गया क्योंकि ये कला क्रांतिकारी संस्कृति को आगे बढ़ाने वाली थी। लोक कला एक ऐसी कला थी जिसने उस समय आधुनिक कला की जगह ली थी। इसमें यथार्थवाद और कभी कभी अभिव्यक्तिवाद शामिल होता है था। इस कला ने राजनीतिक विषयों के साथ साथ क्रांतिकारी विषयों को बढ़ावा देने और प्रचारित करने की कोशिश की और आम लोगों ने विशेष रूप से पीड़ित वर्ग के लिए ये समझने योग्य थी।
विदेशी संस्कृति को जड़ से उखाड़ फेंकने के साथ ही स्थानीय संस्कृति के सुदृढ़ीकरण का उन वर्षों में ईरानी कला पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा। स्थानीय संस्कृति को सुदृढ़ करते हुए एक और तो इसे सांस्कृतिक क्षति से बचाया और सार्वजनिक संस्कृति के स्तर में वृद्धि की तो दूसरी ओर ईरानी कला को दुनिया में अनोखी कला बना दिया। उदाहरण के लिए हम ईरानी सिनेमा और उसके आश्चर्यजनक परिवर्तनों का उल्लेख कर सकते हैं जिसकी किसी भी तरह से क्रांति से पहले के वर्षों से तुलना नहीं की जा सकती। विशेषज्ञों के अनुसार सिनेमा की कला पहलवी शासन के जीवन के अंतिम दिनों में मर चुकी थी लेकिन क्रांति के 40 वर्षों के दौरान उसने इतनी ऊंचाई हासिल की और विकास किया कि न केवल घरेलू स्तर पर क्रांतिकारी और प्रतिबद्ध सिनेमा का एक उदाहरण बन गई बल्कि पूरी दुनिया में अपनी नैतिकता और मानवता के लिए पहचानी जाने लगी।
दोस्तों, किसी भी अन्य सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक घटना की तरह इस्लामी क्रांति के पास भी खुद को प्रकट करने और स्थापित करने के लिए कलात्मक के अलावा कोई विकल्प नहीं था ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए आदर्शों को सुरक्षित रखा जा सके। जैसा कि इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता का कहना है कि कोई भी विचार और कोई भी क्रांति जो कला के रूप में फिट नहीं बैठती है वो स्थायी नहीं हो सकती है।
20वीं सदी की क्रांतियों के इतिहास में कोई आदर्श समाज नहीं था और वे समाजवादी मान्यताओं और आदर्शों पर निर्भर थीं। जबकि इस्लामी क्रांति ने अपने भविष्य, अतीत और पहचान को परिभाषित करने के लिए धार्मिक परंपराओं को पुनर्जीवित करने पर ध्यान केंद्रित किया। हालांकि इस्लामी क्रांति की कला अपने आदर्शों की दृष्टि से अन्य कलाओं की तरह ही थी और क्रांति के शुरुआती वर्षों में ईरानी कलाकारों ने दूसरे देशों के कलाकारों की रचनाओं से मिलती जुलती कलाओं की रचना की।
क्रांति के दौरान कला विद्यालयों के कई छात्र आंदोलन में शामिल हो गए और क्रांति के बाद उन्होंने क्रांतिकारी इस्लामी कला नामक एक कलात्मक आंदोलन की नींव रखी। कलाकारों के इस समूह की पहली प्रदर्शनी तेहरान में हुसैनिये इरशाद में आयोजित की गई। तेहरान के बाद इस प्रदर्शनी के संस्थापक ने ईरान के अन्य शहरों में इसका प्रदर्शन किया। 1979 में तेहरान स्थित समकालीन कला संग्रहालय में उनके कार्यों और रचनाओं की एक बड़ी प्रदर्शनी का आयोजन भी किया गया।
इराक ईरान युद्ध की शुरुआत के साथ ही कलाकारों ने इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की और दो मुख्य लक्ष्य निर्धारित किए। पहला, युद्ध के मोर्चे पर घटने वाली घटनाओं से लोगों को जोड़ना और उन्हें इसमें शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना। दूसरा, ये कि शहादत जैसे विश्वासों को प्रतीकात्मक रूप से पेश करना जो युद्ध के मोर्चे को सुंदरता प्रदान करते हैं। इस दौरान क्रांतिकारी कलाकारों ने प्रत्यक्ष रूप से मोर्चे पर होने वाली लड़ाई और खूनी दृश्यों को पेश करने के बजाय प्रतीकात्मक तरीके से संघर्ष और साहस की अवधारणाओं को चित्रित करने का प्रयास किया। इस तरह शहरों की दीवारें उन शहीदों और नायकों की बड़ी बड़ी तस्वीरों से भर गईं जो कभी खुद उनके बीच रहते थे। उनकी मौत का दर्दनाक और दुखद विवरण दिए बिना और ये शैली कला के इतिहास में एक मिसाल बन गई।
दोस्तों, इस्लामी क्रांति की सफलता के शुरुआती वर्षों में कई मामलों में प्राचीन ईरानी कला के पारंपरिक तत्व और पैटर्न कला के कार्यों में देखे जा सकते हैं। क्रांति के बाद के वर्षों के दौरान ईरानी कलाकार अपनी कलात्मक विरासत को सुरक्षित रखते हुए पश्चिमी कला पर भी एक नज़र डालते हैं। इस तरह इस्लामी क्रांति के कलाकारों ने पूरी समझदारी से इस पद्धति को चुनकर एक नए अनुभव के साथ प्रयोग किया और दुनिया की समकालीन कला में एक विशेष स्थान प्राप्त किया।
इस्लामी क्रांति की एक दूसरी विशेषता उसका स्थायित्व और उसकी निरंतरता है। क्रांति की जीत के 43 साल बाद भी ये क्रांति लोगों को प्रभावित कर रही है, इसका क्या कारण है? आयतुल्लाहिल उज़्मा सैयद अली खामेनेई क्रांति की इस विशेषता को वास्तविकता और सत्य का परिणाम मानते हैं। ये सत्य ही है कि जिसकी वजह से क्रांति मजबूत और स्थिर है। इस्लामी क्रांति की कला में भी एक निरंतरता है।
इस्लामी क्रांति की कला मानव जीवन और उसकी जरूरतों और आकांक्षाओं को चित्रित करने के साथ ही एक विशेषता में इस्लामी क्रांति की भाषा बनने में सक्षम रही है। इस कला ने कार्यों और सामग्री के रूप में इस्लाम और इंसानों पर ध्यान दिया है और एक आयामी होने की कमी से दूर रही है। आध्यात्मिक विषयों के चित्रों ने कला और कलाकार को कभी यथार्थवादी विषयों पर ध्यान देने से नहीं रोका है, क्योंकि इसके अलावा भी कलाकारों ने वर्तमान दुनिया के मुद्दों पर नजरें डाली हैं और जीवन के सभी पहलुओं के लिए कला का उपयोग किया है।
आखिरी बात यह है कि इस्लामी क्रांति की उपलब्धियों में से एक कलाकारों का नैतिक और इस्लामी मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध होना है। ईरानी कलाकारों ने अपने समय की परिस्थितियों के मद्देनजर मानवता और मानव समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को महसूस किया है और समाज में न्याय, करुणा, आत्म बलिदान, नैतिकता और मानवीय विषयों को पेश किया है। ईरान में इस्लामी शासन की स्थापना के बाद ईरानी कलाकारों ने धीरे धीरे महसूस किया कि इन कार्यों में पतिव्रतता से उनके कलात्मक और साहित्यिक मूल्यों को नुकसान नहीं पहुंचता है।
तो दोस्तों, कार्यक्रम का समय अब यहीं समाप्त होता है। हमें अनुमति दीजिए।
अच्छी आदतें हैं।
दोस्तों, कार्यक्रम अच्छी आदतें की एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित है। मरियम मिरदादी और अहमद अब्बास का सलाम स्वीकार कीजिए।
पिछले कार्यक्रम में हमने दुनिया में तेजी से हो रहे बदलाव की वजह से बच्चों को पहले से कहीं अधिक शिष्टाचार सिखाने और उनका सही पालन पोषण करने की जरूरत पर बल दिया था, क्योंकि इस दौर में अगर बच्चों को उनके हाल पर छोड़ दिया जाएगा तो वो इंटरनेट और मोबाइल के जरिए अपनी राह खुद तलाश कर लेंगे, जो उनके भविष्य के लिए घातक भी हो सकती है। जो बच्चे सामाजिक शिष्टाचार से परिचित नहीं होते, वे धीरे धीरे अस्वीकृत, तन्हाई, असुविधा और आत्मविश्वास की कमी जैसी नकारात्मक भावनाओं से ग्रस्त हो जाते हैं। निश्चित रूप से ये नकारात्मक प्रभाव उनके भविष्य और सामाजिक रिश्तों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा।
शिष्टाचार और विनम्रता दूसरों की भावनाओं के प्रति संवेदनशील जागरूकता है। अगर आपके पास ये जागरूकता है तो आप शिष्ट और विनम्र रहेंगे। यहाँ जागरूकता पर जोर देना जरूरी है। विनम्र रहना बहुत अच्छी आदत है। विनम्र व्यवहार जीवन का एक तरीका है। ये व्यवहार केवल कार्यक्रमों या फैंसी रेस्तरा में भाग लेने के लिए नहीं है। ये जरूरी है कि जितनी जल्दी हो सके बच्चे को शिष्टाचार सिखाना शुरू किया जाए, ताकि ये उसकी आदत बन जाए।
दूसरे ये कि विनम्र व्यवहार बच्चे के सामाजिक विकास में मदद करता है। विशेषज्ञों का मानना है कि जो बच्चे कम उम्र में सामाजिक व्यवहार की बारीकियां नहीं सीखते, वे अपनी अलग पहचान बनाने की समस्या से पीड़ित होंगे। एक ऐसा बच्चा कि जिसकी अच्छी तरह से परवरिश नहीं हुई है, वो साथियों और बुजुर्गों के ध्यान से वंचित हो जाएगा। सामान्य तौर पर विनम्र व्यवहार की सीख हमारे जीवन के अंत तक जारी रहती है। ये रातों रात नहीं होता है और ये एक प्रक्रिया है जिसे धीरे धीरे आगे बढ़ाया जाना चाहिए।
कृपया और धन्यवाद जैसे शब्दों का उपयोग करना भी इसी शिष्टाचार का हिस्सा है, जो बचपन से सिखाया जाता है। जिस व्यक्ति को हमने नाराज किया है उससे माफी मांगना शिष्टाचार का एक अन्य तरीका है, जो बच्चों को सिखाया जा सकता है। सामाजिक शिष्टाचार के बुनियादी सिद्धांतों को सीखने के बाद बच्चों के लिए अन्य संचार कौशल और सामाजिक शिष्टाचार सीखने का समय होता है। आप अपने बच्चे को शुरू से ही कुछ मूल सिद्धांत सिखा सकते हैं।
दोस्तों, आपने करिश्मा शब्द और करिश्माई लोगों की विशेषताओं और उनके आकर्षण के बारे में सुना होगा। करिश्माई शख्सियत से विशेष विशेषताओं को सीखकर आप अपना व्यक्तित्व भी करिश्माई बना सकते हैं। जहां कुछ लोग पैदाइशी तौर पर करिश्माई शख्सियत के मालिक होते हैं, वहीं इसे एक कौशल के रूप में सीखकर आप अपना व्यक्तित्व करिश्माई बना सकते हैं। कार्यक्रम के इस भाग में हम इसी विषय पर बात करेंगे।
सामान्य तौर पर करिश्मा एक विशेषता है जो कुछ लोगों में प्राकृतिक रूप से होती है। जिन लोगों में ये विशेषता होती है वे दूसरों को व्यापक रूप से और भावनात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। अब ये प्रभाव चाहे सामान्य दैनिक बातचीत में हो या एक रोल मॉडल और प्रेरणादायक व्यक्ति के रूप में। दूसरों की नज़रों में उनका आकर्षण, उनकी राय, उनकी उपस्थिति और दूसरों को निर्देशित करने की शक्ति, ऐसी विशेषताएं हैं जो करिश्माई शख्सियत सुनकर ही दिमाग में आ जाती है।
खारिस एक प्रसिद्ध लड़की या लड़कियों का नाम है, जिन्हें ग्रीक पौराणिक कथाओं में सुंदरता और आकर्षण के प्रतीक के रूप में जाना जाता था। इस शब्द को अंग्रेजी में कैरिस के रूप में लिखा जाता है। हालांकि कैरिस शब्द का अर्थ आकर्षण नहीं था, बल्कि इसका अर्थ देवताओं की कृपा था। दरअसल ये लोग सुंदरता और आकर्षण से संपन्न थे, लेकिन बाद में ये शब्द ही आकर्षण का पर्याय बन गया। इसलिए अगर हम करिश्मा के अर्थ का उसके शाब्दिक मूल के अनुसार अनुमान लगाना चाहते हैं तो हमें आकर्षण के बारे में सोचना चाहिए और ये मान लेना चाहिए कि करिश्माई व्यक्तित्व वो व्यक्तित्व है जो दूसरों के लिए
आकर्षक है।
ऐसा लग सकता है कि शब्द का इस्तेमाल सिर्फ मनोविज्ञान या सामाजिक कौशल के क्षेत्र में किया जाता है, लेकिन इसका उपयोग समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान और प्रबंधन जैसे अन्य क्षेत्रों में भी किया जाता है। करिश्मा का उपयोग समाजशास्त्र में शक्ति और वैधता के स्रोत के रूप में, मनोविज्ञान में करिश्माई लोगों की विशेषताओं और करिश्मा की उत्पत्ति के रूप में, जबकि राजनीति विज्ञान में करिश्माई नेताओं के विश्लेषण में किया जाता है। लेकिन इन शब्द का इस्तेमाल प्रबंधन में संगठनात्मक नेतृत्व के रूप में एक प्रभावी घटक के रूप में किया जाता है। इसके अलावा शक्ति के स्रोतों में से एक के रूप में करिश्मा का उपयोग किया जाता है। ये भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि जिन क्षेत्रों का हमने उल्लेख किया है उनमें करिश्मा शब्द की परिभाषा अलग अलग है।
आमतौर पर एक करिश्माई व्यक्तित्व के कारण उस व्यक्ति को दूसरों के साथ संबंधों को बेहतर बनाने में मदद मिलती है और जीवन के प्रति उसकी संतुष्टि में वृद्धि होती है। ऐसे व्यक्तित्व का मतलब है आत्मविश्वास और विनम्रता के बीच संतुलन को समझना, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के साथ रहना हर किसी को अच्छा लगता है। हालांकि कुछ लोगों के लिए इस विशेषता को समझना आसान नहीं होता है, लेकिन करिश्माई व्यक्तित्व को समझने वालों के लिए ये बहुत मूल्यवान है, क्योंकि एक ऐसा संतुलन खोजना जो अहंकार और आत्मविश्वास के साथ अंतर को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता हो बहुत महत्वपूर्ण है। हर व्यक्ति चाहता है कि ये संतुलन बना रहे।
अहंकार के बिना प्यार और दया एक करिश्माई व्यक्ति की विशेषताएं हैं। आज हमारी दुनिया को इसी की जरूरत है, क्योंकि हमें ऐसे और लोगों की जरूरत है जो करिश्माई व्यक्तित्व के हों। ऐसे लोगों के व्यवहार संबंधी कुछ लक्षण ये हैं कि उनमें प्रामाणिकता होती है, सक्रिय उपस्थिति होती है, आंखों से अच्छा संपर्क होता है और सक्रिय रूप से सुनने का कौशल होता है। इन गुणों में विनम्रता, परिपक्वता, शक्ति और गर्मजोशी को भी शामिल किया जा सकता है।
जैसा कि हमने उल्लेख किया था कि करिश्माई व्यक्तित्व वाले लोगों के शुरुआती आकर्षण के पीछे मौलिकता होती है। हो सकता है कि आपकी किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो जो अविश्वसनीय रूप से आकर्षक और उत्साह से भरा हो, लेकिन अगर वास्तव में वो करिश्माई नहीं है तो उसका आकर्षण अहंकार में बदल जाएगा। करिश्माई व्यक्तित्व वाले लोगों में मौलिकता के बावजूद एक गहराई होती है। इसका मतलब है कि वे अपने साथियों को सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करने के लिए तैयार रहते हैं।
सक्रिय उपस्थिति दर्ज करवाना करिश्माई व्यक्तित्व की एक और निशानी है। सक्रिय उपस्थिति का मतलब वर्तमान क्षण में केवल भौतिक उपस्थिति नहीं है, बल्कि करिश्माई व्यक्तित्व वाला व्यक्ति अपना ध्यान पूरी तरह से उस व्यक्ति पर दे सकता है जो उसे संदेश दे रहा है। इसीलिए एक करिश्माई व्यक्तित्व के लिए जरूरी है कि वो प्रत्येक शब्द को सुनने और समझने में सक्षम हो। वो सारी जानकारी उस व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है जो सामने वाला दे रहा है या जिसे मदद की जरूरत है। इसके अलावा करिश्माई व्यक्तित्व वाला व्यक्ति आत्मविश्वास से भरा होता है और ये आत्मविश्वास उचित संपर्क के माध्यम से दिखाया जा सकता है।
कुछ लोगों के लिए विनम्रता कठिन होती है, लेकिन करिश्माई व्यक्तित्व वाले लोगों के लिए ये बहुत आसान होती है। विनम्रता में आत्म बलिदान भी शामिल हो सकता है, क्योंकि ये लोग दूसरों को अपनी सर्वोत्तम सेवा प्रदान करते हैं या दूसरों के लिए अपना लाभ भी त्याग देते हैं। वास्तव में करिश्माई लोग घमंडी नहीं होते। जब आप करिश्माई व्यक्तित्व वाले लोगों से मिलते हैं तो आप उनमें विनम्रता देख सकते हैं। आप इस गुण को दूसरों की मदद करने के उनके निरंतर प्रयास और अपनी गलतियों को स्वीकार करने की उनकी अद्भुत क्षमता को भी देख सकते हैं।
करिश्माई लोगों की एक और निशानी यह है कि उनमें परिपक्वता, स्पष्टता होती है। ये लोग बुद्धि को ज्ञान से भी ऊपर रखते हैं, क्योंकि जिन लोगों के पास ज्ञान और बुद्धिमत्ता होती है उन सभी में तर्क और जीवन के अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता नहीं होती है। सच्ची परिपक्वता एक करिश्माई व्यक्ति की निर्णय लेने, जिम्मेदारी स्वीकार करने और दूसरों पर अच्छा प्रभाव डालने की क्षमता से हासिल होती है। ऐसे लोगों को उनकी उम्र से अधिक बुद्धिमान और परिपक्व माना जाता है।
कुछ लोगों में दयालुता और नेक दिली झलकती है, जबकि करिश्माई व्यक्ति में शक्ति भी झलकती है। ध्यान दें कि जिस शक्ति के बारे में बात की जा रही है वो स्वार्थी शक्ति नहीं है, बल्कि उच्च सामाजिक पदों पर बैठे लोगों पर एक प्रकार का अविश्वसनीय प्रभाव और प्रभाव डालने वाली शक्ति है। लेकिन करिश्माई व्यक्तित्व वाले लोग इस शक्ति का उपयोग अपने फायदे के लिए नहीं करते। ये शक्ति कुछ ऐसी है जो केवल एक व्यक्ति के अंदर होती है और दूसरों द्वारा महसूस की जा सकती है। किसी लाभ के लिए शक्ति का उपयोग करना और शक्तिशाली प्रभाव डालना दो पूरी तरह से अलग चीजें हैं। सच्ची शक्ति करिश्मा के माध्यम से दिखाई जाती है।
करिश्माई व्यक्तित्व वाला शख्स गर्मजोशीपूर्ण और मिलनसार होता है। अन्य व्यक्तित्वों के विपरीत करिश्माई व्यक्तित्व वाला व्यक्ति लोगों को स्वीकार्य, महत्वपूर्ण और बुद्धिमान होने का एहसास देता है। वो कभी भी अपने ज्ञान का दिखावा करके दूसरों के ज्ञान को कम नहीं करता, बल्कि वो खुले दिल से लोगों से संपर्क करता है और जो लोग जो कुछ भी कहना चाहते हैं वो उसका स्वागत करता है। इस गर्मजोशी की नकल वे लोग नहीं कर सकते जिनके पास करिश्माई व्यक्तित्व नहीं है, क्योंकि इसे एक दुर्लभ गुण माना जाता है। तो दोस्तों, कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अनुमति दीजिए।